सोचिए कि कोई इंसान खाली हाईवे पर गाड़ी चला रहा है, मतलब रास्ता पूरी तरह सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, और ऐसे में वो स्पीड लिमिट का बोर्ड बस एक सुझाव सा लगने लगता है।
हाँ, एक सजेशन की तरह।
एग्जैक्टली। और अक्सर ऐसी स्थिति में गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन अचानक अगर रियर व्यू मिरर में पुलिस की गाड़ी की झलक दिख जाए
तो तुरंत पैर ब्रेक पर चला जाता है।
बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम इंसानी फितरत है। मुझे लगता है कि हमारा नियम मानना और हमारा बर्ताव इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि उस वक्त हम पर किसकी नजर है।
सही कहा आपने। अधिकार और नियम का ये जो खेल है ना, ये सदियों से इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हम नियम तब ज्यादा मानते हैं जब कोई डंडा लेकर सामने खड़ा हो,
या फिर जब कानून तोड़ने पर कोई तुरंत नुकसान होने वाला हो।
वही तो। और यही हम फितरत इस गहन चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है आज। आज हम एक बहुत ही रोचक विश्लेषण पर गौर कर रहे हैं। ये फिलिपियंस यानी फिलिपियों चैप्टर 1 के वर्सेस 27 से 30 पर आधारित है।
राइट। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई पुरानी धूल भरी ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, इसमें आधुनिक जीवन के लिए बहुत ही व्यावहारिक सबक छुपे हैं।
एकदम सही कहा।
तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ईश्वर के राज्य के नागरिक के रूप में जीने का आखिर मतलब क्या है, जिसे सिटीजन्स ऑफ गॉड्स किंगडम भी कहा जाता है।
हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संदेश आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कितना प्रासंगिक है, जहाँ हर इंसान अपनी अलग दौड़ में शामिल है।
एक लंबा टकराव नजर आता है जब हम एक ईसाई दृष्टिकोण से देखते हैं इस दुनिया की नागरिकता और स्वर्गीय नागरिकता के बीच। कहाँ पर समझौते करने पड़ते हैं और कहाँ पर अपनी जगह पर बिना हिले डटे रहना होता है।
देखिए, इस मुद्दे की सबसे बड़ी गंभीरता ये है कि ये सिर्फ किसी मंदिर, चर्च या मजहबी इमारत के अंदर की बात नहीं है।
तो फिर ये किस बारे में है?
ये चर्चा इस बारे में है कि जब लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे दफ्तर में काम करते हुए, सड़क पर गाड़ी चलाते हुए, तब असल में किस संविधान का पालन किया जा रहा है।
ओह, वो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है।
और इस मुख्य संदेश की गहराई में उतरने से पहले उस पत्र की साहित्यिक संरचना यानी उसके आकार को समझना बहुत जरूरी है।
पुराने जमाने में जब हाईलाइट अ पेन या बोल्ड टेक्स्ट नहीं होते थे,
तब लोग अपने मेन पॉइंट को कैसे हाईलाइट करते थे, और तब लेखक अपने विचारों को लिखने के लिए बहुत ही सोचे समझे ढंग का इस्तेमाल करते थे। फिलिपियंस की इस पत्र का मुख्य हिस्सा, जिसे लेटर बॉडी कहते हैं, वो 1.27 से शुरू होकर 4.3 तक चलता है।
अच्छा।
और इसके अंदर एक बहुत ही खास साहित्यिक ढंग छिपा है, जिसे विद्वान चायास्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं।
चायास्टिक स्ट्रक्चर, अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझें, तो क्या ये एक ऐसी संरचना होती है जहां विचार एक एनवेलप या ब्रैकेट की तरह आपस में जुड़ते हैं?
हाँ, बिल्कुल वैसा ही।
जैसे पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट से जुड़ता है, दूसरा पॉइंट सेकंड लास्ट से, और इस तरह दोनों तरफ से चलते हुए कड़ियां बिल्कुल केंद्र यानी सेंटर में आकर मिलती हैं।
एग्जैक्टली। और इस संरचना के बिल्कुल केंद्र में क्राइस्टहाइम है, जो कि चैप्टर 2 के वर्सेस 5 से 11 तक फैला हुआ है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस साहित्यिक बनावट का प्रभाव कैसा होता है।
तो इसका प्रभाव कैसा होता है, कोई उदाहरण है इसका?
इसको एक बहुत खूबसूरत उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए कि एक पानी से भरा हुआ बड़ा सा बर्तन है। जब उस बर्तन में एक पत्थर फेंका जाता है, तो सबसे बड़ा छपाका ठीक वहां होता है जहां पत्थर गिरता है।
राइट।
लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। उस छपाके की लहरें यानी रिपल्स बर्तन के किनारों तक फैलती चली जाती हैं।
ठीक उसी तरह ये क्राइस्टहाइम इस पत्र का पत्थर है।
वाह, क्या बात है।
ये पत्र के बिल्कुल बीचों बीच गिरता है, जहां क्राइस्ट को एक आदर्श, एक एग्जेम्पलर के रूप में दिखाया गया है, और उसकी लहरें पूरे पत्र में महसूस की जा सकती हैं।
ये लिटरेरी डिजाइन वाकई में बहुत रोमांचक है। एक तरह से बिना किसी मॉडर्न फॉर्मेटिंग टूल के पढ़ने वाले का ध्यान सीधा मुख्य बिंदु पर खींचने का एक शानदार तरीका लगता है मुझे।
हाँ, बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
अच्छा।
क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट लग रहा है।
अच्छा।
कैसे? मेरा मतलब है, क्या वाकई ये संरचना इतनी सोचे समझे ढंग से बनाई थी? जैसे क्या उस वक्त बैठकर ABCBA वाला नक्शा बनाया जा रहा था और फिर शब्दों को उसमें फिट किया जा रहा था?
ये एक बहुत ही वाजिब और अच्छा पुशबैक है,
क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये सिर्फ बाद के विद्वानों द्वारा खोजे गए पैटर्न है जो उन्होंने अपने विश्लेषण को आसान बनाने के लिए निकाल लिए होंगे।
देखिए, विद्वानों के बीच भी इस बात पर लंबी बहस होती रहती है। कुछ का मानना है कि ये पूरी तरह से एक डेलिबरेट और मैथमेटिकल नक्शा था, जबकि दूसरे मानते हैं कि पुराने समय के शिक्षित लोगों की सोचने और लिखने की शैली ही ऐसी थी कि वो नेचुरली इस फॉर्मेट में लिखते थे।
नेचुरल स्टाइल हो सकता है,
लेकिन सच कहूं तो इससे नतीजा नहीं बदलता। चाहे ये मैथमेटिकली प्लान किया गया हो या उनके लिखने का प्रभावी तरीका हो, ये संरचना विषय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को बिल्कुल सटीक ढंग से उजागर करती है।
यानी क्राइस्ट एज एग्जाम्पलर वो इस पत्र का धड़कता हुआ दिल है।
बिल्कुल, और जब हम इस दिल को समझ लेते हैं तभी हम उस आदेश को समझने के काबिल बनते हैं जो इस पत्र का मुख्य मुद्दा है।
और वो आदेश वही है जहां से ये पत्र का मुख्य हिस्सा शुरू होता है। वर्स 1:27 में यहां स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, एक नागरिक के रूप में जीना।
हाँ, और यहां पर कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर उस जमाने के लोगों की सबसे कीमती चीज, उनकी पहचान से जुड़ता है।
राइट, क्योंकि यहां आम जीने वाले शब्दों की जगह एक खास ग्रीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पोलिथ्यूमा।
एकदम सटीक, पोलिटूमा का सीधा संबंध राजनीति, कानून और नागरिकता से है। इस शब्द का वजन समझने के लिए उस जमाने के फिलिप्पी शहर का माहौल समझना होगा।
वो कैसा शहर था? आम शहरों जैसा नहीं था क्या?
नहीं, फिलिप्पी कोई आम शहर नहीं था, ये एक तरह से छोटा रोम था। यहां रोम की सेना के रिटायर्ड सैनिक रहते थे। इस शहर को टैक्स में छूट मिली हुई थी और यहाँ के लोग रोमन नागरिकता को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानते थे।
वाओ, मतलब एक बहुत ही प्रिविलेज्ड जगह थी।
बिल्कुल, रोमन सिटीजन होने का मतलब था समाज में एक ऊंचा दर्जा होना, कानूनी सुरक्षा मिलना और कई ऐसे निजी फायदे जो आम लोगों को नसीब नहीं थे। ये एक ऐसी पहचान थी जिसे लोग बहुत गर्व से दिखाते थे।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी नागरिकता के पहलू को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी मिलती है रेफरेंस मटेरियल में।
हाँ, वो मारपीट वाली घटना,
जब फिलिप्पी में बंदी बनाया गया और सरेआम बुरी तरह पीटा गया। अब सबसे बड़ा झटका यहाँ लगता है कि उनके पास खुद रोमन नागरिकता थी।
एक ट्रम्प कार्ड था उनके पास।
हाँ, उनके पास वो ट्रम्प कार्ड था जिसे चलकर वो इस सारी मारपीट, उस जिल्लत से बच सकते थे। उस जमाने के कानून के अनुसार किसी भी रोमन सिटीजन को बिना मुकदमा चलाए इस तरह सड़क पर पीटा नहीं जा सकता था।
सही बात है,
लेकिन उन्होंने अपना ये ट्रम्प कार्ड उस वक्त अपनी जेब में ही रखा, उसको खेला नहीं। मैं सोचती हूँ कि कोई अपना कानूनी बचाव क्यों नहीं करेगा जब उसके पास अधिकार हो।
यही वो मोड़ है जो किसी भी आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका जवाब निजी स्वार्थ में नहीं बल्कि एक आदर्श में छिपा है। वो उन सभी आम ईसाई लोगों के लिए दुख सहने का एक जीता जागता उदाहरण बनना चाहते थे जिनके पास ऐसी कोई विशेष रोमन नागरिकता नहीं थी।
ओ, मैं समझी।
जरा सोचिए, अगर वो तुरंत चिल्लाने लगते कि मैं रोमन नागरिक हूं, मुझे छोड़ दो, तो बाकी के आम लोग जो रोज ऐसी तकलीफें सहते थे वो क्या सोचते?
वो शायद यही सोचते कि इनके लिए धर्म और विश्वास की बातें करना आसान है क्योंकि इनके पास बचने का वीआईपी रास्ता है।
एग्जैक्टली, उन्होंने बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए अपनी सुरक्षा का त्याग किया। और इसी अनुभव से गुजरते हुए बाद में चैप्टर 3:20 में वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, यानी एक ऐसी नागरिकता जो रोम या धरती के किसी भी कानून से कहीं ऊपर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर असली नागरिकता स्वर्ग की है तो सुसमाचार यानी गॉस्पल उस ईश्वर के राज्य का एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है।
एकदम सही कहा।
और यहीं से जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश शुरू होती है, क्योंकि इंसान फिजिकली तो इसी जमीन पर चल रहा है ना, यहाँ का टैक्स भरना है, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स मानने हैं।
हाँ, दोनों संविधान एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है।
वही ना, जब लोग इस दुनिया के कानून और ईश्वर के नियम के बीच खुद को फंसा हुआ पाते हैं तो ये गॉस्पेल वाला संविधान व्यवहारिक तौर पर कैसे काम करता है?
देखिए, ये तनाव बिल्कुल वास्तविक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गॉस्पेल सिर्फ ये बताकर छुट्टी नहीं कर लेता कि ईश्वर ने इंसान के लिए क्या क्या किया है।
मतलब ये कोई सिनेमा की टिकट नहीं है जो एक बार दिखा दी और काम खत्म।
बिल्कुल नहीं, गॉस्पेल असल में एक मेजरिंग स्टिक, एक कड़ी मापंड है। इस मापन से रोजमर्रा के जीवन का मूल्यांकन करना होता है। फैसले, प्राथमिकताएं, दूसरों के साथ होने वाला बर्ताव, इन सब को इस कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
और यहीं पर सांसारिक राज्य के नियमों और ईश्वर के नियमों के बीच टकराव होता होगा।
हाँ, भारी टकराव पैदा होता है, क्योंकि इस दुनिया के नियम अक्सर ताकत, पैसा और खुद को सबसे ऊपर रखने की बुनियाद पर चलते हैं। जबकि ये नया संविधान प्रेम, त्याग और दूसरों के दुख को अपना मानने की बात करता है।
और इस नए संविधान पर चलना तब और भी भारी पड़ता है जब आसपास उसको लागू करने वाला कोई बड़ा नेता या अधिकारी ना हो। वही हाईवे वाली स्पीड लिमिट की बात वापस आती है यहाँ पर।
बिल्कुल, इंसान का बर्ताव नेचुरली अकेले में बदल जाता है। हाईवे पर स्पीड लिमिट 60 की हो, पर अगर दूर दूर तक पुलिस ना हो तो 75 पर गाड़ी भगाना आम बात है।
हाँ, और बच्चों को ही देख लीजिए, मेरी आदत है नोटिस करने की कि जब माता पिता कमरे में नहीं होते तो बच्चों का बर्ताव बिल्कुल अलग होता है।
वही बात है, ये इंसानी कमजोरी है और इसीलिए लोगों को प्रेरित किया गया कि वो तब भी मजबूती से खड़े रहें जब कोई अधिकारी उनके आसपास ना हो। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा में एकजुट होकर खड़े रहने के लिए जोर दिया गया।
यहाँ एकजुट होने का मतलब शायद किसी जज्बे में बहना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति से जुड़ना है जो अकेलेपन में भी साथ दे।
सही पकड़ा आपने।
अब यहाँ पर एकजुट होकर खड़े रहना सुनने में तो किसी कविता जैसा लगता है, पर जब बाहरी विरोध होता है, जब प्रेशर आता है, तब खड़े रहना कितना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल होता है।
इसको एक फिजिकल फोर्स से जोड़ें तो मुझे अमेरिकन फुटबॉल की ऑफेंसिव लाइन याद आती है। जब सामने वाली टीम पूरी ताकत से आपको कुचलने के लिए हमला करती है तो उस ऑफेंसिव लाइन का हर एक खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जगह पर डटा रहता है।
कंधे से कंधा मिलाकर।
एग्जैक्टली। अगर उनमें से एक भी खिलाड़ी पीछे हटा या उसने सोचा कि मैं अकेले ज्यादा ताकतवर हूं और अलग से लड़ूंगा, तो पूरी की पूरी लाइन टूट जाती है। अकेले मजबूत होना वहां किसी काम नहीं आता, पूरी लाइन का एक साथ स्टैंड फर्म करना जरूरी होता है।
ये फुटबॉल वाली एनालॉजी बहुत ही शानदार है। ये इस विषय को समझने के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है और ये आधुनिक समाज की उस पसंदीदा सोच पर एक करारा प्रहार भी करती है जिसमें रगेड इंडिविजुअल यानी एक अकेले और मजबूत इंसान को सबसे बड़ा आदर्श माना जाता है।
हाँ, आजकल हर जगह सुनने को मिलता है कि इंसान अकेले सब कुछ कर सकता है
या किसी के सहारे की जरूरत नहीं है।
लेकिन इस साहित्यिक और धार्मिक चर्चा के अनुसार ये अकेलेपन वाली सोच बिल्कुल बेबुनियाद साबित होती है। ईश्वर के राज्य की नागरिकता किसी अकेले व्यक्ति के जंगल में घूमने जैसी यात्रा नहीं है। ये सच में डीप है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक सर्मन के बारे में जिक्र है जिसका शीर्षक था हेल्प मी गेट टू हेवन, यानी मुझे स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करो।
हाँ, हिब्रूस की किताब पर आधारित।
राइट। ये सीधे तौर पर इशारा करता है कि ईसाई जीवन अकेले जीने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन पैदा होती है, जब लोग एक साथ आते हैं तो टकराव भी तो होता है।
ओ, बिल्कुल होता है।
हम अक्सर एक मेसी कम्युनिटी देखते हैं। मेरा मानना ये है कि कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को नाराज करते हैं, गलतियां करते हैं, ड्रामा होता है, तो ऐसी मेसी कम्युनिटी आखिर अकेले और मजबूत बनने से बेहतर कैसे हो सकती है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है कि आखिर भीड़ का ये शोर और परेशानी इंसान को बेहतर कैसे बना सकती है। देखिए, मेसी कम्युनिटी में टकराव जरूर होता है, पर यही वो जगह है जहां इंसान के चरित्र का निर्माण होता है।
अच्छा, वो कैसे?
जब लोग आपस में भिड़ते हैं, नाराज होते हैं और फिर एक दूसरे को माफ करते हैं, तभी तो संविधान की प्रैक्टिस होती है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी।
अकेले रहकर खुद को शांत और बढ़िया इंसान मानना बहुत आसान है, क्योंकि कोई आपको चैलेंज करने वाला नहीं होता।
हाँ, वहाँ कोई टेस्टिंग ही नहीं है।
वही ना, पर जब दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ता है, तब पता चलता है कि अहम यानी ईगो कितना बड़ा है। इसी फ्रिक्शन, इसी घिसाव से वो मजबूती आती है जो बाहरी विरोध को झेलने के लिए जरूरी है। अकेले इंसान की लाइन आसानी से टूट जाती है, पर एक मेसी लेकिन यूनाइटेड कम्युनिटी हर विरोध के सामने डटकर खड़ी रहती है।
और जब विरोध सच में सामने आता है, तब उस रिएक्शन की बात आती है जो समझाना चाहते थे। जब दुनिया के नियम और स्वर्ग के नियम टकराते हैं तो सामने से दबाव बनता है। यहाँ एक सीधा आदेश है कि इन विरोध करने वालों के सामने डरना नहीं चाहिए। हाँ, और यहाँ डरने के अर्थ में एक ऐतिहासिक डिटेल जुड़ती है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है।
कैसी डिटेल?
यहाँ फ्राइटेंड यानी डरने के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो आमतौर पर इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन घोड़ों के लिए प्रयोग होता था जो युद्ध के मैदान में अचानक डर जाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं।
ओ, स्पूक्ड हॉर्सेस। युद्ध के मैदान में जब घोड़े डर से पागल हो जाते हैं तो वो अपनी ही सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं शायद।
एग्जैक्टली। वो दिशा भूल जाते हैं, आपस में टकराते हैं और पूरी फॉर्मेशन तोड़ देते हैं। यहाँ कहना ये है कि जब बाहरी विरोध या दबाव आए तो इन डरे हुए घोड़ों की तरह नहीं बनना चाहिए।
बिना डरे अपनी जगह पर खड़े रहना जरूरी है।
बिल्कुल। और ये सिर्फ आपके हौसले की बात नहीं है। जब एक पूरी कम्युनिटी एक ऑफेंसिव लाइन की तरह डटकर खड़ी रहती है तो ये विरोधियों के लिए नाश यानी डिस्ट्रक्शन का एक बड़ा संकेत बन जाता है और खड़े रहने वालों के लिए उनके बचाव का प्रतीक।
और इसी बचाव के संदर्भ में एक ऐसी बात आती है जिसे हजम करना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी आसान नहीं है।
ऐसी कौन सी बात?
बताया गया है कि गॉड ने दो उपहार यानी ग्रेशियसली ग्रांटेड गिफ्ट्स दिए हैं। पहला उपहार है फेथ यानी विश्वास। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, विश्वास एक उपहार है, इस बात से किसी को एतराज नहीं होगा। पर दूसरा उपहार?
दूसरा उपहार सफरिंग को बताया गया है ना, दुख और पीड़ा।
वही तो, रुकिए, ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही है। दुख को एक उपहार, एक ग्रेशियसली ग्रांटेड गिफ्ट कैसे कहा जा सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि किसी इंसान को क्रिसमस पर कोई बहुत ही अजीब से रंग का अगली स्वेटर मिल जाए। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है और आपका आश्चर्य बिल्कुल जायज है। दुख को उपहार मानना इंसानी दिमाग के वायर को उल्टा जोड़ने जैसा लगता है।
पर अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो दुख एक ऐसा अजीब उपहार है जो इंसान की चढ़ाई गई सारी बेवजह की परतों को नोच कर उतार देता है।
मतलब हमारा ध्यान उन चीजों पर लाता है जो सच में मायने रखती हैं।
एग्जैक्टली। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली और वास्तविक उदाहरण का जिक्र मिलता है। एक स्टडी का जिक्र है जो टर्मिनल डायग्नोसिस वाले मरीजों पर की गई थी, यानी ऐसी जानलेवा बीमारी वाले मरीज जिन्हें बता दिया गया था कि उनके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त बचा है।
ओ वाओ, तो स्टडी का निष्कर्ष क्या कहता है? जब वक्त मुट्ठी से फिसलने लगता है तो इंसान का नजरिया कैसे बदलता है?
जब किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी का पता चलता है तो अचानक से उनके दिमाग का फोकस रेजर जैसा शार्प हो जाता है।
हाँ।
रोजमर्रा की जो छोटी छोटी बकवास बातें थीं, जैसे किसी पड़ोसी ने क्या कह दिया, बैंक में कितने पैसे हैं, ये सब अचानक बेहद बेमायने हो जाती हैं।
हाँ, और परिवार, प्यार, रिश्ते, यही बातें सबसे ऊपर आ जाती होंगी।
बिल्कुल। लेकिन इस स्टडी की सबसे बड़ी खोज ये थी कि जब वही मरीज रिमिशन में चले जाते हैं, यानी उनकी बीमारी ठीक होने लगती है और मौत का खतरा टल जाता है, तो कुछ ही वक्त बाद वो धीरे धीरे वापस अपनी पुरानी आम उलझनों में खो जाते हैं।
सच में? वापस उन्हीं छोटी बातों के फितूर में फंस जाते?
हाँ, वही छोटी छोटी टेंशन वापस आ जाती हैं जो उन्हें परेशान करती थी।
इसका मतलब तो ये हुआ कि दुख एक ऐसी छलनी है जो धूप और धूल को अलग अलग कर देती है। जब तकलीफ आती है तब ये पूरी तरह साच हो जाता है कि असल पूंजी हमारा ट्रू ट्रेजर क्या है।
सही पकड़ा। हम सच में कहां खड़े हैं और हमारी बुनियाद कितनी मजबूत है ये पता चलता है। दुख इस बात को सिर्फ दिमागी तौर पर मानने से आगे बढ़ाकर दिल की गहराई में स्वीकार करवाता है।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस अगली स्वेटर को पहनना अकेले बहुत मुश्किल है। यहां वापस उस कम्युनिटी की जरूरत समझ में आती है।
वही पॉइंट।
जब लोग एक दूसरे के आसपास होते हैं तभी इस सफरिंग को, इस दुख को झेला जा सकता है और इसे उपहार के रूप में देखा जा सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब दुख का पहाड़ टूटता है तो अकेला इंसान बिखर सकता है, पर एकजुट होकर जब लोग दुख बांटते हैं तब वो विरोध और वो तकलीफ एक सजा नहीं लगती, वो चरित्र को कुंदन बनाने वाली आग बन जाते हैं। यही वजह है कि अकेले नहीं बल्कि एक आत्मा में एकजुट होकर खड़े रहने की मांग की गई थी।
इन सब बातों को अगर एक साथ लाया जाए तो ये चर्चा एक बहुत ही मजबूत चेन की तरह लगती है जिसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा है। हमने शुरुआत की थी उस साहित्यिक संरचना से जहाँ क्रिस्ट केंद्र में है।
हाँ, वो रॉक इन द पॉट वाला उदाहरण।
एग्जैक्टली। फिर गॉस्पल को अपने जीवन का मापदंड यानी मेजरिंग स्टिक मानना जो ये तय करता है कि दो संविधानों के बीच फैसले कैसे लिए जाएं।
और फिर फुटबॉल की उस ऑफेंसिव लाइन की तरह अकेलेपन से बचकर एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना जो चाहे मेसी हो पर मजबूत हो।
सही कहा। और आखिर में उस दुख को एक ऐसे उभार के रूप में स्वीकार करना जो जिंदगी के टेम्प्रेरी फितूर को हटाकर असल फोकस वापस लाता है। ये सारी कड़ियां इसलिए हैं ताकि इंसान इस दुनिया में रहते हुए भी पूरी तरह से एक अलग और बेहतर दुनिया के नागरिक के रूप में जी सके।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सफर और ये नागरिकता एक दिन का काम नहीं है। नागरिकता का ट्रम्प कार्ड ना दिखाना, बिना पुलिस की मौजूदगी के नियमों पर चलना और युद्ध के डर को एक शांत हौसले में बदलना, ये सब लगातार और रोज होने वाली क्रियाएं हैं।
एक लंबा सफर है जिसमें समझ और विश्वास दोनों का रोज इम्तिहान होता है।
बिल्कुल।
इस पूरी गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसी विचार उत्तेजक बात है जो दिमाग में काफी देर तक ठहरने वाली है। अगर ईश्वर के राज्य का नागरिक होने का असल मतलब ये है कि किसी को उपहार शब्द की पूरी परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी, तो आगे की जिंदगी को कैसे देखा जाए?
ये सोचने वाली बात है सच में।
अगर दुख एक उपहार हो सकता है, तो क्या आधुनिक जीवन की हर परेशानी, हर तकलीफ को किसी नए चश्मे से देखा जा सकता है, जिसे आमतौर पर हम खुशी की रुकावट मानते हैं? क्या ये परेशानियां राह का रोड़ा है, या फिर ये जानने का एक अजीम अवसर है कि हम अकेलेपन के अंधेरे में सच में किस चीज को सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं, जब कोई अधिकारी हम पर नजर नहीं रख रहा होता?
एक बेहतरीन सवाल है, जिसे किसी को भी खुद से पूछना चाहिए। जब हाईवे पूरा खाली हो, आसपास कोई पुलिस की गाड़ी ना हो, तब हमारी रफ्तार और हमारी दिशा क्या होती है? आखिर में यही हमारी असली नागरिकता की पहचान तय करती है।
सही बात है। सीखने का ये सफर यहीं पर खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ नया खोजने को मिलता रहता है। नए नजरिए और नई गहराइयों के साथ विषयों के इस समुन्दर में और आगे बढ़ना जारी रहेगा। ऐसे ही नए विचारों पर गौर करते रहिए और सिखाते रहिए।